हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 7 और श्लोक संख्या 48। तस्मात् अर्थः च कामः च धर्मः च यत् अपाशयः भजत अनिहया आत्मानम् अनिहं हरिं ईश्वरं। तस्मादर्थाश्च कामश्च धर्माश्च यदपाशयः भजतानिहयात्मानम् अनिहं हरिमीश्वरम्। तस्मात् इसलिए अर्थः आर्थिक विकास के लिए आकांक्षाएं च तथा कामः इंद्र तृप्ति के लिए आकांक्षाएं च भी धर्मः धर्म के कर्तव्य च तथा यत् जिस पर अपाशयः आश्रित भजत पूजा करो अनिहया उनके लिए किसी प्रकार की इच्छा से रहित आत्मानं परमात्मा को अनिहं विरस हरेम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ईश्वरं ईश्वर को। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की आध्यात्मिक जीवन के चार सिद्धांत धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की रुचि पर आश्रित हैं। अतएव हे मित्रों भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करो बिना किसी प्रकार की इच्छा किए निष्काम भाव से परमेश्वर पर आश्रित रहकर भक्ति पूर्वक परमात्मा की पूजा करो। तात्पर्य ये बुद्धिमानी के शब्द है। हर व्यक्ति को ये जान लेना चाहिए कि जीवन की प्रत्येक अवस्था में हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित हैं। अतएव हम जिस धर्म को स्वीकार करते हैं वह भागवत धर्म होना चाहिए जिसकी संस्तुति प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। यही कृष्ण का उपदेश है, सर्वधर्मान् प्रत्यजमामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है भागवत धर्म या भक्ति के विधि विधानों के अनुसार कर्म करना। जहां तक आर्थिक विकास का संबंध है हमें अपने अपने वृत्ति पूर्वक कर्तव्य करने चाहिए किंतु उनके फलों के लिए भगवान के चरण कमलों पर पूर्ण रूप में आश्रित रहना चाहिए। कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें अपने वृत्ति पूर्वक कर्तव्य करने का अधिकार तो है किंतु कर्म के फलों का अधिकार तुम्हें नहीं है। मनुष्य को अपने पद के अनुसार अपने कर्तव्य करने चाहिए किंतु फल के लिए कृष्ण पर पूरी तरह आश्रित रहना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं कि हमारी एकमात्र कामना यही होनी चाहिए कि हम कृष्ण भावनामृत के कार्यों को संपन्न करें। हमें कर्म मानसा दर्शन से भ्रमित नहीं होना चाहिए जिसके अनुसार यदि हम गंभीरता पूर्वक अपना कर्तव्य करते रहें तो उसका फल स्वतः प्राप्त हो जाएगा, यह तथ्य नहीं है। अंतिम फल तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा पर निर्भर है। अतः भक्ति में भक्त भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहता है और निष्ठा से अपने वृत्ति पूर्वक कर्तव्य संपन्न करता है। अतः प्रहलाद महाराज ने अपने मित्रों को सलाह दी कि वे कृष्ण पर पूरी तरह निर्भर रहें और भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करें। अनुवाद एक बार फिर से सुनिए। आध्यात्मिक जीवन के चार सिद्धांत धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की रुचि पर आश्रित है अतएव हे मित्रों भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करो बिना किसी प्रकार की इच्छा के निष्काम भाव से परमेश्वर पर आश्रित रहकर भक्ति पूर्वक परमात्मा की पूजा करो। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे अपने मित्रों को सहपाठियों को जो असुरों के पुत्र हैं उनको ये सुझाव दे रहे हैं कि वास्तव में ये भगवान की रुचि पर आश्रित है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यानी कि इन सभी कार्यों के द्वारा हमें भगवान को प्रसन्न करना है। इस तरह से आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं नौकरी करते हैं तो उद्देश्य क्या होता है कि आप अपने बॉस को मालिक को खुश करें। अगर मालिक आपसे खुश नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर लें उसका लाभ विशेष लाभ नहीं है, यानी कि आपको प्रसन्नता स्वयं नहीं होगी। अगर मालिक खुश है और बॉस खुश है तो आप भी खुश है। तो इसलिए क्या देखा जाता है कि अगर कोई अपने नियमित कर्मों को ही कर ले किसी के आश्रित रहकर, तो वो जो रूटीन वर्क है या जो नियमित कर्म है आपके, वही अपने आप में जो है वो क्या कहते हैं प्रयास माना जाएगा, शब्द भूल गया मैं, अपने आप में प्रयास माना जाएगा कि उसके द्वारा आप अपने बॉस को प्रसन्न कर पाए। तो उद्देश्य क्या है कि हम अपने बॉस को प्रसन्न करें। इसी तरह से उद्देश्य क्या होना चाहिए धर्म अर्थ काम मोक्ष का, कि हम भगवान को प्रसन्न करें। भगवान प्रसन्न नहीं है तो सब निरर्थक है, सब बेकार है, सब व्यर्थ है। तो देखिए कलयुग में अगर हम देखें तो यह संभव ही नहीं है कि धर्म को सबसे पहले स्थान दिया जाए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म को तो सामान्य लोग क्या समझते हैं या समाज में क्या समझते हैं, धर्म तो विभाजन के लिए है, धर्म समाज में विभाजन करने के लिए है, धर्म समाज में कलह मचाने के लिए है। धर्म की परिभाषा लोग यही देते हैं कि धार्मिक होने से आप अपने पेशे में लग नहीं सकते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आप बेकार हो जाएंगे, समाज के लिए एक पैरासाइट बन जाएंगे। जो धार्मिक व्यक्ति है, जो गेरुए वस्त्र में है, जिन्होंने पीले कपड़े पहने हैं, जिन्होंने अपने केश दे दिए हैं, तो वो सब क्या है, पैरासाइट है पूरे समाज के लिए, क्योंकि ये धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? तो ऐसे जो ऐसे धर्म का कोई स्थान नहीं है आज के समाज, ये बड़ी दुखी बात है, क्योंकि हमारा जो देश है भारतवर्ष, ये धर्म के ऊपर आधारित, ये धर्म भूमि है, धर्म भूमि में ही धर्म का स्थान नहीं है। हिमालय में तो बर्फ होता है, हिमालय में क्या होता है बर्फ, और समुद्र में क्या होता है पानी। तो धर्म भूमि में क्या होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि धर्म भूमि में अधर्म का स्थान है। कलयुग अपना पूरा प्रभाव दिखा चुका है। कलयुग का मतलब ही है अधर्म का प्रभाव, धर्म का प्रभाव नहीं है। श्रीमद् भागवत के 4वें स्कंद में 8वें स्कंद में 41वें श्लोक में बताया गया है, धर्मार्थ कामम मोक्षाख्यम यद इच्छे श्रेय आत्मनः एकम ही एव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। अगर कोई धर्म अर्थ का मोक्ष से कोई अगर फल प्राप्त करना चाहता है तो उसको क्या करना होगा, भगवान की भक्ति में लगना पड़ेगा। भगवान की जो भक्ति में लगता है उसको धर्म अर्थ का मोक्ष का फल वैसे ही प्राप्त हो जाता है। और इस तरह हमें किसी के पास और किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इस पूर्ति के लिए धर्म अर्थ का मोक्ष के द्वारा जो फल प्राप्त होता है उसकी पूर्ति के लिए हमें किसी साधारण व्यक्ति या देवी देवता के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो किसके पास जाना पड़ेगा, भगवान के पास जाना पड़ेगा। और ये क्या बताया, एक और बताया इसी 7वें स्कंद में 14वें अध्याय के 34वें श्लोक में बताया गया, हरेस्तत्र पाद सेवनम पात्रम तो अत्र निरुक्तम वही कभीवीर पात्र वित्तमय हरिर एवेक उर्विषा यन मायम वही चराचरम। यानी कि पात्र कौन है जिसको हम शरणागत हों, जिनकी हम शरण में जाएं, वो पात्र कौन है जिसमें जिस व्यक्ति में चर और अचर जीव दोनों ही समाये हुए हैं, जो सभी कारणों के कारण है, और हरे सत्पाद सेवनम या फिर भोक्ता कौन है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातमाम शांति में क्षति। भोक्ता, भगवान अपने आप को भोक्ता बता रहे हैं कि मैं हूं परम भोक्ता, आई एम सुप्रीम एंजॉयर। क्यों है कि आप सुप्रीम एंजॉयर, आपको क्या हक है सुप्रीम एंजॉयर होने का? हक है क्योंकि वही नियंता है, वही परम नियंता है, वही सबके स्वामी है, तो तो उनको भोगी बनने का पूरा अधिकार है, हमें नहीं है, आपको नहीं है, आप तो इस शरीर के भी मालिक नहीं है, ये शरीर भी आपका अपना नहीं है, तो फिर बाकी और क्या हो सकता अपना। जब जिस घर में आप रह रहे हैं वो अगर किराए का मकान है, अगर वो मकान ही आपका नहीं है तो फिर आपका कुछ भी नहीं है, आप भोगी हो ही नहीं सकते, आप तो भोग्य है, मकान मालिक के द्वारा भोग्य है, प्रकृति पुरुष के द्वारा भोग्य है। तो इसी तरह से प्रकृति जीव ये सृष्टि भगवान के द्वारा भोग्य है, भगवान भोगता है, जो मालिक है वो भोगेगा, जो मालिक नहीं है वो कैसे भोग सकता है, वो तो चोर है। जो मालिक नहीं है अगर वो भोगता है तो उसको क्या कहते हैं, स्थिन एवं से उच्चते, उसको चोर बताया है भगवान ने गीता में। तो इसलिए ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई श्रीमद् भागवत के 34 स्कंद के 31वें अध्याय के 14वें श्लोक में, एक बहुत सुंदर श्लोक है जो आप जानते होंगे, यथा तरोर मूल निष्नेन त्रिपेति तस्कंद भुजोप शाखा प्राणोपारा च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्णम अच्युतेज। जड़ में पानी डालिए, शाखाएं सारी शाखाएं तृप्त हो जाएं, पेट में भोजन डालिए, सारी इंद्रियां का पोषण हो जाता है, आपका पेट भर जाता है, इंद्रियों का पोषण हो जाता है, आप तुष्ट हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं, भूख प्यास आपकी मिट जाती है जड़ में पानी डालने से ही। इसी तरह से भगवान को प्रसन्न करने से क्या होता है, देवी देवता अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मालिक को खुश कर लो बस, अगर मालिक खुश है तो सब खुश। एक बार क्या हुआ कि श्रील प्रभुपाद जी से उनके शिष्यों ने पूछा कि श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद के कोई गुरु भाई दुर्भाव हो गया था उनका, तो शिष्यों ने पूछा, प्रभुपाद ने कहा कि हैज गॉन बैक होम बैक टू गॉड। तो शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद ऐसा तो हमें लगता है शायद उन्होंने आपकी सहायता नहीं की थी जब आप गए थे उनके पास। प्रभुपाद कहते हैं, हाँ मैं जानता हूं, बट ही वॉज डियर टू माई गुरु महाराज। यानी भगवान को प्रसन्न किया या भगवान के प्रतिनिधि को प्रसन्न किया, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सबको दुखी खाएं, इसका निष्कर्ष यह भी नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि भगवान को प्रसन्न करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, भगवान के प्रतिनिधि को प्रसन्न करना, उनको खुश करना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो इस श्लोक में यही बताया गया कि कैसे अगर कोई जड़ में पानी डालता है तो शाखाएं लता पता फूल या फल सब तृप्त हो जाते हैं, तो अलग से हमें किसी को तृप्त करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो इसलिए जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम सबका कर्तव्य है, परम कर्तव्य है जानना, क्या बताइए क्या, कि धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। जैसे आप लोग हमेशा सेमिनार्स में कहते हैं सर्च फॉर हैप्पीनेस, सुख की तलाश, सुख की तलाश में क्या बोलते हैं आप, आनंद की खोज, बहुत अच्छा बताया है। लेकिन आनंद है नहीं संसार में, आनंद तो केवल भगवान के धाम में है, लेकिन फिर भी उसकी तलाश हम लोग करते हैं संसार में और बताते हैं कि पशु जीवन और मनुष्य जीवन में क्या भेद है। पशु धर्म की तलाश नहीं करता है, पशु मंदिर नहीं आता है, पशु धर्म का आश्रय लेकर मंदिर नहीं आता है भीख मांगने के लिए, लेकिन मनुष्य आज के समय में धर्म का सहारा लेता है मंदिर आकर भीख मांगने के लिए, अपने देह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। लेकिन पशु अपने देह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कभी मंदिर नहीं आता। देखा आपने कभी कभी कुत्ते को या सुअर को राधिका रमण जी के समक्ष आते हुए कि मुझे आज भूख लगी, मुझे खाने को नहीं मिला। पहली बात है पशु में इतनी चेतना भी नहीं है कि मंदिर जाके ये सब मांग सके, लेकिन मनुष्य में ये चेतना है, क्या गिरी हुई चेतना, कि धर्म का सहारा ले रहे हैं, धर्म का सहारा लेके तिलक लगा के इत्यादि मंदिर आते हैं वही चार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। यह है धर्म, तथाकथित धर्म। तो इस प्रकार एक बड़ा सुंदर बात बताई थी महात्मानंद प्रभु ने, एक बार उन्होंने बताया ये धर्म जो है वास्तव में ये हमारे शरीर का भोजन है, ये हमारा भोजन, इसको हमें खाना है, धर्म को हमें खाना है। जिससे हमारा शरीर बनता है, और अर्थ क्या है, ये वस्त्र है जो हमने ऊपर पहने हुए हैं। ये वस्त्र की तुलना उन्होंने अर्थ से की और शरीर की तुलना उन्होंने धर्म से की, यानी कि खिलाना तो शरीर को ही है, धर्म को खिलाना है, और अर्थ क्या है, ये वस्त्र है। अब कुछ लोग जो है वो हो सकता है कि समाज में देखते हैं कि कुछ लोग बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, बहुत कीमती वस्त्र पहनते हैं, लेकिन भोजन बहुत सरल होता है उनका। लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत सुस्वादिष्ट भोजन खाते हैं, डेलिशियस सम्पचुअस फीस्ट ही पाते हैं, पनीर रसमलाई कुल्फी इत्यादि खाते हैं, लेकिन वस्त्र बड़ा सरल पहनते हैं। खैर ये तो अपना अपना ख्याल है, अपनी अपनी बातें हैं। लेकिन अब देखिए, कोई मान लीजिए किसी का वस्त्र अगर फटा हो, वस्त्र अगर फटा हो, कुछ छेद हो और धागा निकल रहा हो उसमें से फट के, तो इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर भी रुग्ण है उसका। इसका निष्कर्ष क्या नहीं निकलता, क्या नहीं निकलता बताइए? अगर वस्त्र फटा हुआ है तो इसका निष्कर्ष ये नहीं निकलता है कि शरीर भी फटा हुआ है। शरीर भीतर से स्वस्थ हो सकता है, वस्त्र बड़ा सरल है, लेकिन अगर मान लीजिए कि शरीर अगर रुग्ण हुआ और शरीर से पस निकल रहा हो, उसमें जख्म हो गया हो, कहीं चोट लग गई हो, या पस निकल रहा हो, पूछ कर रहा हो बाहर, तो उसके ऊपर आपने अगर महंगे महंगे वस्त्र पहने हो तो कैसा लगेगा बताइए? वो कपड़ा खराब हो जाएगा, अंदर से पस निकल रहा है। तो इसी तरह से ये जो शरीर की तुलना धर्म से की गई है, जिसको भोजन खिलाया जा रहा है, जो उसको हम खाते हैं भोजन को, और अर्थ की तुलना इस वस्त्र से की गई है। तो अर्थ जो है, ये वस्त्र जो है, इसको आप हल्का फुल्का पहनिए, जिस तरह से हमारे भक्तों ने पहना हुआ है, सरल सा वस्त्र पहना हुआ है। 365 दिन एक ही रंग का वस्त्र पहनते हैं हमारे भक्त पूरे साल। देखिए रुक्मिणी की खुशबू, इस मंदिर के अध्यक्ष हैं, लेकिन 365 दिन गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। कोई वैरायटी नहीं है इनके जीवन में भौतिक दृष्टि से, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भीतर वैरायटी वैरायटी है, विविधताएं भरी हुई है। एक ही रंग का वस्त्र पहन रहे हैं और ये बेचारे बुरा मना रहे हैं। बुरा मानेगा ऐसे बोल, ये भक्त हमारे पीताम्बर वस्त्रधारी है, लेकिन ये भी प्रसन्नचित है भीतर से, क्योंकि जानते हैं कि कृष्ण भी पीताम्बर वस्त्रधारी है। उत्साह इनका भी बढ़ाना चाहिए। तो देखा जाए तो हमसे श्रेष्ठ अवस्था में है ये, क्योंकि पीताम्बर वस्त्र जो साक्षात श्री कृष्ण पहनते हैं, वही पीताम्बर वस्त्र इन्होंने पहना हुआ है। तो ये है भक्त, हम हैं दास। किसी ने बताया तो बड़ा अच्छा हमें, कि दीक्षा से पहले हम सब भक्त होते हैं और दीक्षा के बाद हम दास हो जाते हैं। तो भक्त तो आप हैं, हम तो दास हैं, यानी कि भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार, लेकिन आधुनिक समाज और कलयुग का समाज विशेष रूप से बिल्कुल उल्टा है। वो इस वस्त्र को खिला रहा है, यानी अर्थ पे जोर दे रहा है, और जिसको खिलाना चाहिए उसको नहीं खिला रहा है, धर्म को नहीं खिला रहा है। बिल्कुल उल्टा हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि मनी इज स्वीटर देन हनी। प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में कि मनी इज स्वीटर देन हनी, यानी कि रात को नींद नहीं आ रही है, पच नहीं रहा है, आते सूख गई है आपकी, खुश्की आ गई पूरे शरीर में, आते ठीक से काम नहीं कर रही हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, सर में बहुत दर्द है, पारिवारिक झगड़ा चल रहा है रिश्तेदारों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है, बच्चे तंग कर रहे हैं, रात को जाग के चिल्ला रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। लेकिन जब हम अपना बैंक बैलेंस देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है, बस उसी में सारी खुशी है। धन हो हमारे जेब में, रोकड़ा कैश हो, यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य, और कुछ नहीं चाहिए हमें। भाड़ में जाए धर्म की क्या आवश्यकता है। धर्म की आवश्यकता है जेब भरा जाए, जेब तो पहले से ही भरा हुआ है। भिखारी जाते हैं मंदिर, हम नहीं जाते हैं। हमारे पास तो बटन के नीचे स्विच है, एक स्विच दबाता हूं तो करोड़ों रुपया आ जाता है। तो क्या आवश्यकता है धर्म की? कितने करोड़पति खरबपति इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं राधिका रमन जी, बिरले ही होते हैं वो जी। बाइबल में क्या लिखा है बताइए? एक सुई को हाथी को सुई के छिद्र से निकाल सकते हैं, लेकिन धनी व्यक्ति के लिए भगवान के धाम जाना बड़ा कठिन है। क्षमा करिए उल्टा बोल गया। तो धनी व्यक्ति के लिए भगवान के धाम में जाना बहुत कठिन है, सब झुकाना बड़ा कठिन है राधिका रमन जी के सामने धनी व्यक्ति के। इसलिए नारद जी कहते हैं अगर संग ही करना है किसी का तो गरीब व्यक्ति का करो, धनी व्यक्ति का बहुत दिक्कत होगी। तो अर्थ जिसके पास है वो अर्थ जो है क्या करता है, उसको कितना भी कष्ट आए जब वो बैंक बैलेंस देखता है तो बस मुस्कुराने लगता है, उसका उपभोग कुछ नहीं कर सकता है वो, लेकिन धन देकर वो खुश हो जाता है। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। तो ऐसे भी अगर आप देखे जाए, जैसे हमारे कई भारतीय हैं सऊदी अरेबिया में, मिडिल ईस्ट में, अमेरिका में, कई जगह नौकरी कर रहे हैं, और हमारे जो भारतीय हैं वो बोल भी देते हैं गर्व से, हमारा बेटा देखिए अमेरिका में नौकरी कर रहा है, सऊदी अरेबिया में जॉब कर रहा है, वो तेल की कंपनी है, तेल का बिजनेस करता है, रियाल कमाता है, रियाल सऊदी अरेबिया की करेंसी है। और उन लोगों का क्या कहना है कि हम लोग 5-6 साल यहाँ नौकरी करेंगे, खूब दम कमाएंगे और वहां पे सोने का घोंसला बनाएंगे, गोल्डन नेस्ट, और वो थारा धन कमा के हम भारत आएंगे और बंबई में, दिल्ली में आकर बड़े बड़े मकान बना के यहाँ खूब ऐशो आराम के साथ जिएंगे। इन भारतीयों को यहां पर भीख मांगने दो, हम धन कमा के लाएंगे विदेशों से। और माता पिता इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके सुपुत्र बाहर से आएंगे, विदेश से आएंगे, उनका देखभाल करेंगे, उनकी रखवाली करेंगे। नहीं, भूल गए वो अपने माता पिता को, वृद्धाश्रम में भेजो, हम मंथली वहां पर रेंट भेजेंगे उनके लिए, लेकिन अब हम एक साथ नहीं रह सकते, संभव ही नहीं है, हमारे पास जगह ही नहीं है, बच्चों को भी पढ़ाना है, हमारा इतना इनकम नहीं है। तो इस प्रकार जो है अर्थ ही जो है वास्तव में जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बन चुका है। अर्थ ही हम वास्तव में कलयुग में अर्थ ही धर्म है, धर्म तो है ही नहीं अर्थ, तो अर्थ ही वास्तव में धर्म है। तो इसी तरह से ये जब आते हैं वहां सऊदी अरेबिया से आते हैं या यूरोप से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, और गर्मी के मौसम में क्या करते हैं, गर्मी के मौसम में जब 50 डिग्री टेम्परेचर होता है वहां मिडिल ईस्ट में, तो अपना कबोर्ड खोलते हैं और देखते हैं कि कितना बैंक बैलेंस है। वाह, बैंक बैलेंस देखकर बड़ी खुशी होती है। और जब यहां पर ठंड के मौसम में आते हैं, इधर जब दिल्ली भारत में आते हैं तो यहां पर भी ऐसे ही करते हैं, और ठंड के मौसम में बहुत ठंड लग रही है, बीमार पड़े हैं, फिर जो है अपना कबोर्ड खोल रहे हैं, फिर देख रहे हैं बैंक बैलेंस, एक बड़ी प्रसन्नता होती है। यानी कि सर्दी के मौसम में गर्मी की अनुभूति होती है कैश देके, और गर्मी के मौसम में सर्दी की अनुभूति होती है फिर से कैश देके। तो धन को देख ले बस, वही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, हमेशा भक्तिदास नजर आते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। तो इस प्रकार पूरा जीवन बीत जाता है, बड़ी दिक्कत की बात है। इसलिए हमारा आध्यात्मिक जीवन तो पूरा नष्ट ही हो जाता है, धर्म का तो कोई स्थान ही नहीं है। 99.9% 99.9% जो पॉपुलेशन जो है केवल अर्थ के लिए ही अपना जीवन बिता रहे हैं। अर्थ नहीं है तो शोक मना रहे हैं, अर्थ कमाने के लिए योजनाएं बनाई जा रही है, या अर्थ के माध्यम से और कितने प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो पूरा जीवन जो है शोक और हर्ष में बीत जाता है। हम सब एक तरह से, एक दृष्टि से हम सब भी हर्ष शोक है, जैसे महाराज चित्रकेतु के पुत्र थे हर्ष शोक, खुद भी हर्ष शोक है और दूसरों के लिए भी हर्ष शोक का कारण बन जाता है, क्योंकि हमारा आधार, हमारा केंद्र बिंदु क्या है, धर्म है। और इसमें कोई अगर धर्म के कुछ अवशेष रह जाते हैं, हम बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, हमारे बड़े अच्छे संस्कार हैं, हमारे पूर्वज बड़े धार्मिक रहे हैं, हम हफ्ते में एक बार मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मैं रोज सुबह उठ के अगरबत्ती जलाता हूं हनुमान जी को, और मंगलवार के दिन मैं बूंदी चढ़ाता हूं 1.25 रुपए का, मुंह में ही बूंदी ठूस देता हूं, हरे कृष्ण, 9:30 बजे दर्शन खुलेगा, आज समय परिवर्तन है, हनुमान जी को मंगलवार के दिन बूंदी उसके मुंह में ढाल देता हूं, मुंह में ठूस देता हूं मैं, सोमवार को मैं शिव जी का व्रत रखता हूं, वीरवार को साईं बाबा की पूजा करता हूं, शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा करता हूं। लेकिन 33 करोड़ देवी देवता हैं, कैसे करेंगे एक हफ्ते में सबकी पूजा, एक दिन में कम से कम 9 लाख देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो हो सकता है कुछ वर्षों में आप 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा कर पाए, और उसमें भी चॉइस है, उसमें भी सिलेक्शन है, ओ हमें तो चाहिए था क्या, गुड़। एक देवी देवता को गुड़ चाहिए, एक देवी को चना चाहिए, किसी को नारियल चाहिए, किसी को गुड़ चाहिए। बड़ी समस्या है। तो इस प्रकार से लोग अपने को धार्मिक बताते हैं। आई एम वेरी रिलीजियस। बड़ी समस्या है। तो इसलिए जब तक हम सही धर्म की परिभाषा को नहीं समझेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा जीवन पाप कार्य में बीत जाएगा, पाप कार्य में बीत जाएगा। तो इसलिए जब तक हम लोग गुरु साधु शास्त्र का आश्रय नहीं ले जाते या सही मार्गदर्शन नहीं होता है तो हम धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है यह भी नहीं जान पाएंगे हम लोग मनुष्य जीवन प्राप्त करें। इसलिए अधिकांश जनता जो है वो धर्म अर्थ काम अर्थ में लगी है या काम में लगी है, ना धर्म का कोई स्थान है, मोक्ष का तो स्थान है ही नहीं। और लेकिन याद रहे, अगर कोई धर्म का सही पालन करता है तो निश्चित रूप से उसको अर्थ प्राप्त होता है और उसके बाद उसकी भौतिक इच्छाएं भी पूरी होती हैं। जैसे श्रीला प्रभुपाद कहते हैं ईशोपनिषद में कि अगर कोई अगर भोजन कर रहा है तो उसमें अगर नमक डालना जरूरी है स्वाद के लिए तो उतना तो इंद्रिय तृप्ति आपको अलाउड है। ऐसा नहीं कि मैं नमक भी नहीं डालूंगा क्योंकि मैं जीवा को तृप्त नहीं करना चाहता। तो यानी कि आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज है, मूल आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए कोई धर्म का अनुशीलन करता है जो कर्म कांड के आधार पर है तो उसमें कोई दोष नहीं है, वो शास्त्र के आधार पर है। देखिए श्रीमद् भागवत, अब देखिए लेकिन समस्या ये है, वो कहेंगे कि धर्म की अलग अलग परिभाषा दी गई है, कहीं कुछ कहा गया है, कहीं कुछ कहा गया है, एक वेद मंत्र ऐसा बताया गया है तो कहीं और कुछ उसका उसी का खंडन कर दिया जाता है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब छोटा बच्चा भी जाए मैथमेटिक्स सीख रहा है लेकिन पीएससी में मैथमेटिक्स जो है वो अलग ही अंडरस्टैंडिंग है उसकी। हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह एक ही लॉज अप्लाई होने चाहिए पूरे पृथ्वी में। अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो वहां पर शायद ओवरटेक आप लेफ्ट से करेंगे, वहां राइट हैंड ड्राइव है या लेफ्ट हैंड ड्राइव है। तो कंट्री टू कंट्री भी लॉ डिफर करते हैं, देश से देश हम देखते हैं कि कानून बदल जाता है। तो धर्म भी जो है समय काल परिस्थिति के अनुसार उसमें भी परिवर्तन आ सकता है। एक बार किसी ने पूछा हमारे जो है डिसीशन हमारे बदलते रहते हैं, कई बार हमारी संस्था में कुछ पूछते आपके भी कई डिसीजन बदलते रहते हैं संस्था, क्यों नहीं? भगवान भी जो है धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान भी अलग अलग धर्म की परिभाषा देते हैं समय काल परिस्थिति के अनुसार। भगवान बुद्ध ने तो वेदों को ही बंद कर दिया है कि नहीं, और जब शंकराचार्य को भेजा तो वेदों को खोला गया लेकिन फिर निर्विषय निराकार की स्थापना की गई। तो कहने का मतलब है कि समय परिस्थिति काल के अनुसार धर्म की स्थापना होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन समस्या है कि हम लोग समझ ही नहीं पाए कि वास्तविक धर्म क्या है। ये तो धर्म सांसारिक धर्म की बात की जा रही है, ये भागवत धर्म की चर्चा नहीं हो रही है। यहां जो हमने बताया वो कौन सी चर्चा कर रहे हैं, धर्म की, सांसारिक धर्म, इस शरीर को चलाने के लिए कुछ धर्म की आवश्यकता है, उस धर्म के बारे में हम बता रहे हैं। लेकिन ऐसा धर्म जो है वो मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य नहीं है, ऐसा धर्म तो कर्म कांड के ऊपर आधारित है। जैसे मान लीजिए हम ऐसे कोई जाके जो है किसी मार्केट में जाके हम लोग गोलगप्पे खाना चाहते हैं, चाट, कुछ फ्रेंड्स गए चाट खा लिया वहां जाकर, या फिर कनॉट प्लेस में चले गए काके की हट्टी या पंजाब की हट्टी जो भी है। हमें याद है पुराने दिनों में हम लोग भी जाया करते थे मित्रों के साथ, चलो भी आज ट्रीट है हमारी तरफ से काके की हट्टी चलते हैं, कनॉट प्लेस, कनॉट सर्कस। उसके बाद केवेंडर्स में जाके हम लोग वहां मिल्क शेक पिएंगे, होता कि नहीं होता? तो एक प्रेस्टीज इश्यू है कि जाना है सबके साथ और फिर ट्रीट देना है लेना है, तो दिस इज अ प्रेस्टीज इश्यू, बहुत जरूरी है फ्रेंड सर्कल में ये सब करना। और उसके बाद फिर पेट खराब हो गया, सुबह डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने कहा, केमिस्ट ने कहा कि चलो ये हमारे पास कुछ पिल्स हैं इनडाइजेशन के लिए, गैस को दूर करने के लिए आप दवाई ले ली, फिर दवाई ले ली ठीक हो गए, फिर से एक्शन, फिर वीकेंड फिर से आया, फिर से शुरू हो गए काके की हट्टी पंजाब की हट्टी, चले जी वहां जाके फिर से खाओ दाल मखनी और पनीर और शाही पनीर और कोफ्ता, चलो जी लेके आओ खूब खाओ। खाने के बाद फिर से चलो जी कैवेंडर दूध पीने के लिए, और पान की दुकान में जब पान खाओ तो ये सब चलता रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद व्यक्ति हताश हो जाता है, बोलते यार जब भी खाता हूं उसके बाद मुझे दवाई लेनी पड़ती है, फिर खाता हूं फिर दवाई लेनी पड़ती है, फिर खाता हूं फिर दवाई लेनी पड़ती है, ये हो क्या रहा है, बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा जो है और आगे नहीं बढ़ा जा सकता, बहुत हो गया, अब मैं इसे छुटकारा पाना चाहता हूं। तो बेसिकली क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष बिल्कुल वैसे ही है कि धर्म से अर्थ मिला और अर्थ से कामनाएं आपकी कुछ पूरी हुई, लेकिन फिर उससे हताश होकर तो फिर मोक्ष की इच्छा करते हैं आप। तो इसलिए हम लोग यही नहीं समझ पाते हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, और अंततः हम लोग सभी यही चाहते हैं कि ये सब जो है हम इससे छुटकारा पाएं, इन कष्टों से छुटकारा पाएं। अंत में तो जीव हताश हो ही जाता है। भक्ति पाने के लिए, भगवान की सेवा में लगने के लिए तो कई जन्म लग जाते हैं, उसको तो आप भूल जाओ फिलहाल। भगवान की सेवा में रथ होने के लिए तो भाग्यवान जी जो यहां बैठे हैं उनको तो कई जन्म लग गए, आप सबको कई जन्म लग गए, बहुनाम जन्म नाम अंते, आप सब ज्ञानी हैं जो रानिका रमन जी के शरण में आए हैं। लेकिन हर व्यक्ति हर जीव यहां पर नहीं आता है। तो इस प्रकार, लेकिन ध्यान रहे, जैसे सुनार होता है, सोना, सोनार, सोनार मतलब गोल्डस्मिथ, गोल्डस्मिथ गोल्ड का चेन बना के दे रहा है। जैसे हमारी माताएं कई बार सोने का कंगन लेके जाते हैं, इससे जी हमें हार बनाना है, तो गोल्ड चेन बनाना है या कुछ गोल्ड रिंग बनाना है, तो फिर वो जो गोल्डस्मिथ है वो उसको भी हैमर करता है, गोल्ड को करता है कि नहीं करता, बट बहुत सॉफ्टली करता है, एक्सपर्टली करता है, उसको प्रॉपर शेप देने के लिए, टेक्सचर देने के लिए, बहुत धीरे 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 धीरे। तो ये वास्तव में क्या है, ये जो धीरे धीरे जो का प्रोसेस है वो बेसिकली क्या है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जिसमें बहुत समय लग जाता है। लेकिन जो ब्लैकस्मिथ होता है, लोहार होता है, वो लोहार क्या करता है, आपने जब कंस्ट्रक्शन साइट में कहीं बिल्डिंग बन रही है या फिर आपने देखा होगा जब किसी को लोहा जो है उसको लोहे को तोड़ना होता है, और एक बहुत बड़ा हथौड़ा होता है, उस हथौड़े को उठाने का मतलब है कि दोबारा शायद नहीं उठाएगा वो, एक ही बार उठाएगा वो, इतना भारी हथौड़ा होता है, उठा के ऊपर ले जाता है और अपने पूरा मसल पावर यूज करता है, पूरी शक्ति के साथ उस लोहे पर पार कर देता है, और क्या होता है, वो लोहा टूट जाता है। तो बिल्कुल भक्ति वैसे ही है, बिल्कुल कि भक्ति में मतलब एक ही बार आप मारो झटका, हलाल का कोई सिस्टम नहीं है, हलाल में धीरे धीरे काटेंगे ऐसे 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 ऐसे, और अंततः हताश भी हो जाएंगे, लेकिन झटके में आए कि झटके में मारो बस हो गया गर्दन साफ। तो इस तरह से भक्ति योग के प्रोसेस को हमें समझने का प्रयास कर रहे हैं। चेतन चरता अमृत ने बताया, चेतन चरता आदि लीला प्रथम अध्याय 90 श्लोक में, 90 नंबर श्लोक में लिखा है, अज्ञान तमेर नाम कोही कैटव धर्मर्थ काम मोक्ष वांछ आदि सब। तो अज्ञान तक अंधकार यानी कि कैटव है, ये धोखा देने की प्रवृत्ति है जो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष से शुरू होता है। श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत के एक श्लोक के टीका में लिखा है कि सभी अज्ञानता का सार धर्म अर्थ काम मोक्ष है। श्रीधर स्वामी लिख रहे सभी अज्ञानता का सार क्या है, द एसेंस ऑफ ऑल इग्नोरेंस इज धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसको पुरुषार्थ कहते हैं लोग, लेकिन हम पुरुषार्थ में नहीं फंसना चाहते हैं, हमें पुरुषार्थ की आवश्यकता ही नहीं है भक्तों को, हमें तो धर्मार्थ यानी कि परमार्थ यानी कि प्रेमा पुमार्थो महान, इसकी आवश्यकता से हम लोग यहां पर मौजूद हैं। तो ये श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है, धर्म प्रोजित कैटवत्रो परमो निर्मत्सरानाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापोत्रयम उन्मूलम श्रीमद भागवत महामुनि कृते किंबा परम ईश्वर सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृति भी शुशुशुभि तत्क्षणात्। तो ये वास्तव में प्रउज्जिता, श्रीधर स्वामी कहते हैं प्रउज्जिता का मतलब ये है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष को श्रीमद् भागवत से निकाल के फेंक दिया गया है, कंप्लीटली किक्ड आउट, लात मार के भगा दिया गया इसको, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है श्रीमद् भागवत में, क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है वो शुद्ध भक्ति की स्थापना कर रहा है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत में धर्म अर्थ काम मोक्ष की कोई भी कोई आवश्यकता नहीं, कोई स्थान नहीं है। तो वास्तविक स्थान धर्म क्या है, जीव का धर्म क्या है, जैव धर्म क्या है? जैव धर्म श्रील भक्तों ठाकुर ने लिखा कि जैव का धर्म यानी कि जीव का धर्म क्या है, ये जाना कि जो सुषुप्त कृष्ण भावना है उसको जगाना, यानी कि भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा करना ये सर्वोच्च धर्म है जीव का, यही वास्तविक धर्म है, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब क्या है कि जीव का वास्तविक धर्म क्या है? भगवान कृष्ण की सेवा करना, और कोई उसका कर्तव्य नहीं है और कोई उसका धर्म नहीं है। बाकी सब क्या है? छल धर्म है, कैटव धर्म है, चीटिंग रिलीजन है। क्योंकि अंततः ये जितने भी कैटव धर्म है आपको केवल फ्रस्ट्रेशन देने वाले हैं, हताश करने वाले हैं। तो इस प्रकार बनावटी जो धर्म है उससे हमारे जीवन में हमें लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, वो केवल मानसिक स्तर पर है। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणे तत्र समासते सुरा हरो भक्तस्य कुतो महगुणा मनोरथे नास्ति धावतो भई। यानी कि जो भगवान के भक्त नहीं है वो सब क्या है? मन के रथ पर आरूढ़ होकर चले जा रहे हैं, भय जा रहे हैं मन के रथ पर। यानी कि उनका जो धर्म है तथाकथित धर्म क्या है? वो मानसिक धरातल पर है, मेंटल प्लेटफॉर्म में है। आत्मा को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है उससे। तो इस प्रकार, लेकिन क्या है कि समस्या यह है कि इस प्रकार का जो छल करने वाला धर्म है ये हमारी अपनी देह है। हम लोगों ने इसको लाद के रखा अपने सर पे। हम हमारी इच्छा है कि हम लोग कुछ सस्ता चाहते हैं, चीप चाहते हैं, चीप रिलीजन चाहते हैं। इसे नाना प्रकार के धर्म है। और फिर समाज में तो बहुत तरह के धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख वगैरह वगैरह, कितने वैरायटी है रिलीजन में। आपके मत के अनुसार हो सकता है ये है, हमारा मत अलग है, क्योंकि हम ये हैं आप वो हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार के झगड़ों में ही हम फंसे हैं। जैसे सुबुद्धि राय थे, सुबुद्धि राय के सेवक थे, असिस्टेंट थे, उनके सर्वेंट थे नवाब हुसैन शाह, सैयद खान, तो ये उनकी सेवा में लगे थे। तो एक बार सुबुद्धि राय जो है उन्होंने एक लेक बनवाना था और ये नवाब ने काफी मदद की थी, लेक लेकिन ठीक से बनाया नहीं, उसने कुछ गड़बड़ कर दिया उस लेक को बनाने में। तो सुबुद्धि राय ने क्या किया, चाबुक से मारा पीछे पीठ, और जोर से चाबुक में मारा। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर एक दिन सुबुद्धि राय की जो पत्नी थी, जब ये कपड़े पहन रहे थे उन्होंने पीछे देख लिया, पीठ में चाबुक, क्या कहते हैं उसका, निशान था, चाबुक मारने का निशान था। तो उन्होंने उसकी पत्नी ने पूछा, ये कहां पे लगा आपको, किससे मारा आपको ये? कहा कि नहीं, मैं जब उस समय, क्योंकि अब जो है मुसलमान सरकार ने जो है नवाब को जो है बहुत ऊंची पदवी दे दी थी, नवाब की पदवी मिल गई थी अब उसको। तो अब उनकी पत्नी ने देखा कि आपको किससे मारा, नहीं मैं जब सुबुद्धि राय की सेवा में था तो उसने एक बार मार दिया था मुझे चाबुक, जो भी है, लेकिन उससे मेरी बहुत मदद की, बहुत सहायता की, मैं बहुत कृतज्ञ हूं उसने जो भी कुछ किया मेरे लिए। लेकिन उनकी पत्नी बहुत गुस्से में आ गई, उसने कहा तो उसको तो मृत्युदंड मिलना चाहिए। तो बहुत अनुरोध किया, बार 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 वो कहने लगी, नहीं नहीं उसको मारो मारो मारो, उसने ऐसा क्यों किया आपके साथ। तो सुबुद्धि राज सोच पड़ के क्या करूं अब मैं, ये है नवाब, तो नवाब जो है वो सोच पड़ के क्या करूं मैं, ये बार बार ये पत्नी मुझे कह रही है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करो फिर, आप एक सुझाव है, या तो उसको आप मृत्यु दंड दीजिए या हमारे समाज से उसको निष्कासित कर दीजिए। तो नवाब ने सोचा ठीक है ऐसा ही करता हूं मैं। तो फिर उन दिनों क्या होता था कि अगर यामन लोग आपके शरीर में जल छिड़केंगे गिलास से लेकर लोटे से लेकर, तो आपको ब्राह्मण समाज से, हिंदू समाज से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही हुआ, सुबुद्धि राय के ऊपर जल फेंका उस नवाब ने, और उसके बाद फिर सुबुद्धि राय को निष्कासित कर दिया। और ब्राह्मण से जाके पूछा कि मैं क्या करूं, इसका क्या पश्चाताप है, इसका क्या पश्चाताप है? उनका इसका पश्चाताप ये है कि आपको खोलता हुआ गरम गरम घी पीना होगा, इसका ये पश्चाताप। सुबुद्धि राय बहुत चिंतित हो गए, उन्होंने कहा, सोचा कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए, ये तो बहुत ही अन्याय हो गया मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो चेतने महाप्रभु के पास गए। तो चेतने महाप्रभु ने कहा ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। चेतने महाप्रभु ने कहा कि आपको कोई गर्भ खोलता हुआ घी पीने की आवश्यकता नहीं है, आप जाइए वृंदावन धाम और वहां पे ब्रज धूलि लीजिए आप मस्तक में, और वहां जाकर आप निरंतर हरिनाम लीजिए, आप निरंतर हरिनाम लीजिए, सारे पाप काप के वैसे ही धुल जाए, और कुछ नहीं करना आपको, ये गर्म खोलता हुआ गर्म गर्म घी पीना। तो इस तरह से तथाकथित जो है धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था। जैसे हम जानते हैं कि कनकदास जो मध्वाचार संप्रदाय का जो मंदिर है उड़पी कृष्ण, उस मंदिर में प्रवेश करना चाहते थे, उनको रोक दिया गया था कि आप भीतर नहीं जा सकते क्योंकि आप अछूत हैं। लेकिन उड़पी कृष्ण ने क्या किया, भगवान ने क्या किया, अपना मुख बदल लिया दूसरी ओर और कनकदास को दर्शन दिया। आज भी आप देख सकते हैं कि उस विग्रह का, उसके विग्रह की दिशा दूसरी तरफ है। तो कनकदास को दर्शन प्राप्त हुआ। तो जब कोई भी जीव जो है भगवान की सेवा करना चाहता है तो फिर भगवान हर तरीके से सहायता करते हैं, लेकिन हम नाना प्रकार के धर्मों में फंसे रहेंगे और ये भूल जाएंगे कि सर्वोच्च धर्म भगवान की सेवा है। जैसे स्वयं भगवान गीता में बता रहे हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज आम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग कर आप केवल मेरी शरण में आओ, भगवान कह रहे हैं, और कोई धर्म का अनुशीलन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, डरो मत, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो अब लेकिन अब इसे निकलने का रास्ता क्या है, निकलने का रास्ता ये श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत ऐसा अमल पुराण है कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करने मात्र से ही हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। और कुछ यज्ञ और कुछ तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा सुनिए, आपका हृदय निर्मल हो जाए। यह है सर्वोच्च धर्म। सभी पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रभोक्षदे अयुत की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। ये कैसा धर्म है, अनइंटरप्टेड है, अनमोटिवेटेड है, केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, और कोई उद्देश्य नहीं है इस धर्म का। तो इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत का धर्म है। लेकिन जो जो कर्मकांडी है या जो फल की आकांक्षा रखते हैं, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, फल चाहते हैं, किसी जगह नौकरी लगते हैं, नौकरी पे लगते हैं, तो सबसे पहले यही पता करते हैं कि पैकेज क्या है, कितना हमें पे मिलेगा, पे स्केल क्या होगा, कितना हमें सैलरी क्या मिलेगी, रोकड़ा क्या मिलेगा। और वो व्यक्ति एम्प्लॉयर आपसे पूछेगा कि कितने घंटे आप दे सकते हो, कितना टाइम आप दे सकते हो, ओवर टाइम भी होगा, 8 या 9 भी बच सकते हैं रात को, तो ठीक है मुझे कितना पे मिलेगा, कितना ओवर टाइम मिलेगा। तो यानी कि फ्रूटिव रिजल्ट का मतलब ये है कि हम लोग हमेशा फ्रूट की आकांक्षा करते हैं, और बिना फ्रूट के, बिना फल के हम कहीं काम करेंगे नहीं। तो पूरा जो ट्रांसैक्शन क्या होता है हमारा, एक बिजनेस ट्रांसैक्शन होता है, वहां पर प्रेम का संबंध नहीं है। बॉस को अपने एम्प्लॉय से प्रेम थोड़ा है, वो तो देखता है कि इस व्यक्ति से कितना मैं शोषण करूं, कितना निकाल लो इसके अंदर से, कितना खून इसका निकाल लो बाहर, और साथ में इसको क्या दूं, मैं धन दूं, कैश दूं, वो खुश है फल की आकांक्षा करते हुए। इसलिए लोग जो है मेहनत करने के लिए, इतना मेहनत करने के लिए तैयार है कि उनको होश ही नहीं है कि घर भी है, परिवार भी है। आप जाएंगे अगर चाइना में, जापान में, ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो शायद आपको हफ्ते में 1 या 2 दिन ही आपको घर जाने देती है। उसमें एम्प्लॉय जो है वो पूरे हफ्ते ऑफिस में ही रहता है, उसको घर जाने का मौका ही नहीं मिलता है। 18 से 20 घंटे लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, क्यों, उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, केवल धन कमान, फ्रूट। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो ज्ञान की तलाश में है, ज्ञान के मार्ग में कई बार तो ऐसा होता है कि लक्ष्य का ही नहीं पता चलता है, और ज्ञान केवल शुष्क ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति शुष्क हो जाता है। जैसे हम सार्वभौम आचार्य के जीवन चरित्र में सुन रहे थे, वो नहीं जान पाते हैं कि सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, वो समझ ही नहीं पाते हैं। और कुछ है जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं, कुछ सिद्धियां प्राप्त करते हैं, और योगिक सिद्धि में क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसे योगी होते हैं जिसमें कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है, अनिमा लगिमा महिमा प्राप्ति ईशिता वशिता प्राकाम्य कामा कामाय वशिता, अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है, योगिक सिद्धियां प्राप्त होती है, पत्थर के भीतर से भी निकल सकते हैं, जैसे आजकल तो गुफा बना के लोग ट्रेन से निकल रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन कई बार जो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो बोलते हैं ये योगी सिद्धियां बेकार है सब। श्रील प्रभुपाद ने बोला कि देखिए ये योगी, प्रभुपाद से एक शिष्य बोला कि योगी 25 साल उसने बिता दिया तपस्या किया है, वो नदी के ऊपर चल सकता है। तो प्रभुपाद ने कहा एक नाव को बुलाओ, तो नाव बुलाया गया। उस समय 5 या 10 पैसे लगते थे नदी पार करने के लिए मायापुर में, तो सब भक्त लोग नाव में चढ़े और नदी पार कर गए श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ। प्रभुपाद ने कहा कितना समय लगा प्रभुपाद, उन्होंने कहा शिष्य ने कहा कि 10 मिनट लगा प्रभुपाद। तो योगी को तो 25 साल लगे थे नदी पार करने में, हम तो 10 मिनट में नाव से नदी पार कर गए और हमने केवल 10 पैसे दिए, बस 25 साल बर्बाद कर दिया उसे केवल नदी में चलने के लिए, बताइए। तो ऐसे योगी सिद्धियों का क्या फायदा। आज इंग्लिश चैनल, जो इंग्लिश चैनल है इंग्लैंड में, जो यूरोप में है इंग्लिश चैनल, उसके भीतर से उसके नीचे से रेलवे लाइन निकाल दिया है। वहां के इंजीनियर्स है फ्रेंच और ब्रिटिश इंजीनियर्स, इतने तेज है कि समुद्र के नीचे रेलवे लाइन है, और कई ऐसे एरिया है जहां पे 2 लेवल्स पर रेलवे लाइन। तो फिर कौन से योगी सिद्धि की बात कर रहे हैं। तो आजकल के जो वैज्ञानिक इतने एडवांस हो गए हैं तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। और आज हम देखते हैं कि अगर प्लेन में कोई उड़ के जाता है हवाई जहाज में, अगर आप गलती से कॉकपिट में चले जाओ तो हार्ट अटैक हो जाएगा, क्योंकि आप वहां देखेंगे कि पायलट्स बैठ के कॉफी पी रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, अरे प्लेन कैसे उड़ रही है, क्रैश ना हो जाए, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। हमने कभी कॉकपिट में जाकर देखा है नहीं, हमें लगता है कि वो हैंडल पकड़ के बैठा होगा 3 घंटे। नहीं, वो जमाना और था, ये जमाना और है। तो आजकल का विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, तो इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो कोई बाबा है, कोई अपनी योगी सिद्धि के द्वारा घड़ी निकाल के देता है, लेकिन वो भूल जाता है वो घड़ी जो है स्विस वॉच, उसने घड़ी खुद नहीं बनाई, लेकिन उसमें क्षमता क्या है, उस घड़ी को ला के आपके सामने रख देगा। एक बार इसी तरह से एक बाबा थे, उनको मीडिया वालों ने कैच कर लिया, उन्होंने हाथ से निकाल के सोने की चेन दी थी, लेकिन वो सोने की चेन उनके कुर्ते के भीतर से निकल के आ रहे थे। इतने एक्सपर्ट से निकाला सोने का चेन, किसी को दिखाई नहीं दिया, लेकिन कैमरा ने पकड़ लिया, यानी वो कैमरा ज्यादा एक्सपर्ट है उस योगी से। तो फिर वो पकड़ा गया कि भैया तो चीटिंग करना था, हम तो सोच रहे थे कि ये तो जादूगर है, ये सिद्धि है, इसके बाद बहुत शक्ति है, अपने हाथ से उसने सोने का चेन निकाल के दिया है, लेकिन वो तो कुर्ते के अंदर था। तो इस तरह से तो कई जादूगर हैं। तो कहने का मतलब है ये योगिक सिद्धियां या फल की आकांक्षा करना या एक छोटे बच्चे को ये बताना कि कल से ठंड शुरू हो जाएगी, जनवरी के दिसंबर के महीने से ठंड शुरू हो जाएगी। वो मेरे पिता देखो कितने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। बच्चा नहीं जानता है कि हर साल ठंड आती है, लेकिन बच्चा जब पहली बार ठंड की अनुभूति करने वाला है तो उसको बताया जा रहा है कि देखो कितनी ठंड होगी, स्वेटर पहन लो, वाह। या फिर ये बताया जा रहा है देखो क्रिकेट मैच। अब पिता ने देखा कि बच्चा बहुत ऐसे क्रिकेट देख रहा है, बिगड़ जाएगा, पढ़ता नहीं है, पहली बार टीवी घर में आया, रिमोट से पिताजी ने क्या किया, टीवी को बंद कर दिया। अरे मेरे पिताजी कितने शक्तिशाली हैं, उन्होंने बैठे बैठे यहां से टीवी को बंद कर दिया, कितने बड़े मिस्टिक योगी हैं मेरे फादर। लेकिन वो नहीं जानता कि तो उनका कोई कमाल नहीं है, तो रिमोट का कमाल है। तो इस तरह से जो लोग धर्म का अनुशीलन करते हैं वास्तव में इतना धोखा खाते हैं और धोखा देते हैं समाज में सबको। लेकिन वास्तव में हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, भगवत भक्ति में लगना चाहिए। भगवान की भक्ति में लगने से, भगवान की सेवा में लगने से हमारी सारी आकांक्षाएं सारी इच्छाएं वैसे ही पूरी हो जाती हैं। तो लेकिन आप देखिए भगवद गीता में भी अर्जुन नहीं समझ पाए थे कि मेरा सर्वोच्च धर्म क्या है। वो सोचे कि पारिवारिक धर्म, नैतिक धर्म, कितने सारे धर्मों की व्याख्या की अर्जुन ने, सामाजिक धर्म है, नैतिक धर्म है, ये मेरे रिश्तेदार है, मेरे भाई बंधु है, मेरे सगे संबंधी है, मेरे पितामह है, मेरे गुरुजन है, कितने सारे लोग खड़े हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूं, ये मेरा पारिवारिक धर्म है, ये मेरा फैमिली रिलीजन है, नैतिकता कहां रही, मैं अपने गुरु को ही मार रहा हूं। बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, बहुत अच्छा लग रहा है कहने में, क्योंकि अगर आप इस फ्रूटी पाथ को अगर फॉलो करते हैं तो स्वाभाविक है, या ज्ञान के मार्ग को फॉलो करते हैं या मिस्टिसिज्म के पाथ को फॉलो करते हैं तो स्वाभाविक क्या है कि आप धीरे धीरे पुण्य आत्मा बनने लग जाते हैं। तपस्या के कारण आप पुण्य आत्मा बनने लग जाते हैं, और पुण्य आत्मा बनने के कारण आप ये सोचते हैं कि मैं तो बहुत पुण्यवादी हूं या पुण्य आत्मा हूं, तो मैं जो सोच रहा हूं वही सही है। यानी ऐसे सात्विक सुख के कारण क्या होता है, सात्विक अहंकार होता है और व्यक्ति अपने आप को सुखी मानते हुए यह सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही। ऐसा उसको कल्पना होती है, ऐसे ज्ञान से उस प्रकार का भ्रम उसको हो जाता है। अर्जुन को भी इसी तरह का भ्रम हुआ। अर्जुन ये सोच रहा था कि मैं बहुत विद्वान। अर्जुन को भगवान ने ऐसी स्थिति में डाला कि अर्जुन को भी इसी बात की अनुभूति होने लगी कि मैं हिंसावादी नहीं हूं, मैं किसी को मारता नहीं हूं, मैं कितना, मैं बहुत पुण्य आत्मा हूं, मैं तो एक चींटी को भी नहीं मारता हूं, मैं इनको कैसे मारूंगा। ऐसे कई बार हम भी जो है गुरु को तर्क देते हैं, नाना प्रकार के तर्क देते हैं सेवा ना करने के, अनर्थों को कहीं तो एक्सपोज करेंगे हम। तो जिसको हम लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा त्याग है, जिसको हम सोचते हैं कि बहुत बड़ी विरक्ति है, लेकिन वास्तव में वो हमारी नपुंसकता होती है कि नहीं। कई बार बोलते हैं नहीं नहीं हम मैनेजमेंट में नहीं लगना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में हम जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहते। एक बार एक भक्त को हमारे महाराज ने कहा कि हम आपको जीबीसी चेयरमैन बनाएंगे। तो भक्त ने कहा नहीं 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 महाराज मुझे पोस्ट नहीं चाहिए। तो महाराज ने कहा ये पोस्ट नहीं है, ये जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार हम लोग जो सोचते हैं कि हम सही सोच रहे हैं वास्तव में सही नहीं होता है। तो अर्जुन को इसलिए बहुत बड़ा अच्छा मौका मिला। कृष्ण ऐसे मित्र नहीं थे कि उनके इस शोक में उनका साथ दें। वो ऐसे मित्र नहीं है कि वो हितेशी बन जाए। हाँ अर्जुन जो तुम सोच रहे हो ठीक सोच रहे हो, मैं तो गलत बोल गया, वास्तव में ये तो तुम्हारे सगे संबंधी है ना, तुम्हारे अपने ही भाई हैं, तुम कैसे इनको मार सकते हो। ठीक है हम चलते हैं हस्तिनापुर। कितने अच्छे मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण। नहीं हमें क्या शिक्षा मिलती, फिर हमें क्या धर्म की परिभाषा मिलती, ये कि देहात्म बुद्धि में लगे रहना ये जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। लेकिन भगवान जो क्या कह रहे हैं, अशोच्यान अनवशोचस्त प्रज्ञावादांश भाषजे गतासु न गतांशु नानुशोचन्ति पंडिता। तो पंडित सोचते हैं आप तू एक नंबर के एक दर्जे के मूर्ख हो, यू आर फूल नंबर वन। अर्जुन को भगवान ये कह रहे हैं, अगर यार ये तो मेरा मित्र है मुझे मूर्ख बोल रहा है, मैंने तो सोचा कि हम लोग ये मेरा सारथी बन गया, ये जो है अब जो मैं कहूंगा वो करेगा, लेकिन मुझे क्या पता था सारथी बनके मुझे ही चाबुक मारेगा घोड़े को नहीं। ये कैसा मित्र निकला। लेकिन अर्जुन ने ऐसा सोचा नहीं, अर्जुन ने भगवान की बातों को बहुत गंभीरता से लिया। और जब भगवान ने कहा तस्मा समेषु कालेषु मा मनुस्मरा युद्धस्य, हर परिस्थिति में हर अवस्था में मेरा स्मरण करते युद्ध करो, ये सर्वोच्च धर्म है, ये है भक्ति। प्रभुपाद एक लेक्चर में बोल रहे हैं कि अर्जुन का युद्ध करना कुरुक्षेत्र में ये भक्ति योग है। भक्ति की परिभाषा समझ नहीं पाते हैं। भक्ति का मतलब केवल उसे माला करना नहीं, कोई भी ऐसा कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए वो भक्ति में आ जाता है। इसे कई बार हम देखते हैं गुरु बोलते हैं कि जाओ अभी आप फिलहाल नौकरी करो, करते रहो जॉब, तो उस शिष्य के लिए, उस पर्टिकुलर शिष्य के लिए वो नौकरी करना भी क्या है, भक्ति है, क्योंकि वो गुरु की आज्ञा है और उसी मार्ग से उसी रास्ते से जो है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त होगा। जैसे भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जब अमेरिका में थे और पीएचडी कर रहे थे, प्रभुपाद से बोले कि प्रभुपाद पीएचडी सब नहीं करना चाहता, मैं छोड़ना चाहता, आपकी सेवा में लगना चाहता। नहीं, प्रभुपाद ने कहा पीएचडी कंप्लीट करो एंड प्रूव टू द साइंटिस्ट दैट गॉड एग्जिस्ट, साइंटिफिकली यू प्रूव दैट। तो कई बार गुरु जो ऐसा मार्गदर्शन देते हैं शिष्यों को ताकि वो अपने परिस्थिति और काल के अनुसार जो है भगवान की सेवा कर सकें, और वही उनके लिए सर्वोच्च कार्य है, वही उनके लिए भक्ति है। तो इस प्रकार से अर्जुन लेकिन समझ गए, अश्रुपूर्ण कुलक्षेणम गाढ़ीवीनम समस्त दे हस्ताक परिधयते, यानी कि बिल्कुल असहाय अवस्था में अपने गाढ़ीव को रखते हुए अर्जुन जो है पूरी तरह से समर्पित हो गए भगवान की सेवा में। तो लेकिन वास्तव में होता क्या है, आज की आधुनिक परिपाटी बिल्कुल बदल गई। टीचर पढ़ाते पढ़ाते कोई मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और पढ़ाते पढ़ाते वो कंफ्यूज हो गया, एक घंटे के बाद वो बोलता है अपने स्टूडेंट्स को बोलता है कि वास्तव में हम सब एक ही नाव में हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि इसका क्या सोल्यूशन निकलना चाहिए। लेकिन वो बुद्धिमान शिष्य उसमें से एक बुद्धिमान स्टूडेंट उठ के कहता है उस टीचर को, सर हम एक नाव में जरूर हैं लेकिन आप तो हमारे कप्तान हैं। अगर कप्तान ही इस तरह से कह देगा कि समस्या का कोई हल निकल रहा है, तो फिर एक नाव में होने का क्या फायदा, फिर तो हम लोग कभी भी छोर तक पहुंचेंगे नहीं। हो सकता है कि इसी नाव में बैठे बैठे यहीं डूब जाए नदी में, समुद्र में। तो ऐसा मित्र होने का कोई फायदा नहीं है, ऐसा संगत होने का कोई लाभ नहीं है अगर वो भगवान कृष्ण की तरह ना हो। क्योंकि भगवान कृष्ण हमारे असली मित्र, सुहृदं सर्वभूतानां, वो हमें बता रहे हैं कि वास्तविक धर्म क्या है। ये छल धर्म को सबको छोड़ दो और वास्तविक धर्म को अपनाओ, तभी हमें जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। अब जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया वो वास्तव में कौन सा धर्म दिखाया? प्रेमापमर्थो महान, चैतन्य महाप्रभु। अब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो एक दफा क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु जानते हैं कि गंभीरा में रहा करते थे 12 वर्ष, आखिरी 12 वर्ष गंभीरा में ही रहे श्री चैतन्य महाप्रभु एकांत में। स्वरूप दामोदर रामन राय गीत गोविंद से, चंडीदास और जयदेव गोस्वामी के द्वारा लिखित गीत गोविंद से उनको गीत सुनाया करते थे, उनको सांत्वना देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु बाहर निकलना चाह रहे थे, क्योंकि क्या होता था, वो अपने स्टूडियो को दीवार के साथ बार बार खरोदते थे और उनके शरीर से खून निकलता था। गंभीरा जो आप बात देखते हैं वो वास्तव में वो स्थान नहीं है, जानते हैं आप, उसके अंदर से सीढ़ी निकलती है, सीढ़ी के नीचे जब जाएंगे बेसमेंट में, वहां वो स्थान है जहां पर दीवार में खून की छींटे हैं, वो सबको उस समय दिखाते नहीं। हालांकि रास्ता वही है लेकिन वास्तव में वो स्थान नीचे है बेसमेंट में। तो जहां पर वो दीवार में चैतन्य महाप्रभु इस चिन्ह से अपने दीवार को दीवार से खुरद रहे थे और खून निकल रहा था, इसलिए महाप्रभु के इस एक्सटेसी को देखकर वो भक्त लोग घबरा गए थे, उनको बाहर नहीं जाने दे रहे थे। रात्रि के समय कई बार वो सिंह द्वार में जाके खुद जाते, सिंह द्वार के पास जाके पड़े रहते और उनको बहुत मुश्किल होता कई बार ढूंढना। तो एक बार देखा कि स्वरूप दामोदर इन सब भक्तों ने देखा कि कहाँ चले गए, कहाँ चले, बहुत चिंतित हो गए। उन सब भक्तों ने कहा कि आप ठीक है, आप पूर्वी दिशा में जाओ, पश्चिम दिशा में जाओ, आपसे देखो कहाँ पर है, कहाँ पर है। क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जब जीव अपने सर्वोच्च धर्म को प्राप्त कर लेता है और भगवान से प्रेम करता है तो भगवान के लिए वो चिंतित हो जाता है, जैसे माता यशोदा कृष्ण के लिए चिंतित हो जाती है हमेशा। इसलिए भक्त जो है हमेशा चिंता करते हैं कि कहाँ गए महाप्रभु, कहाँ गए, हमें छोड़ के किधर चले गए, कुछ हो ना जाए उनको। अनिश्चिता शंखनी बंधु हरदिनया भवंती ही, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि भक्त को सदा चिंता रहती है अपने प्रभु के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु को ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते वो पहुंचे और वहां देखा एक मछुआरा, मछुआरा समुद्र के पास खड़ा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था और अपने मुख से बोल रहा था हरी 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 हरी, पागल सा हो गया था, रो रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो सबने सोचा कि क्या हो गया, इसको किसी ने भूत ने तो नहीं पकड़ लिया है, इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है ये। तो वो फिर मछुआरे ने बताया कि वास्तव में मैं मछली पकड़ने गया था रात्रि के समय, अर्धरात्रि के समय, लगभग 12:30 बजे 1 बजे का समय था। और मैं रात्रि को जब मछली पकड़ने लगा था तो क्या हुआ, मैंने फिर अपने जाल में देखा कुछ बहुत बड़ी मछली आ गई, मैंने सोचा बहुत भारी लग रहा था उठाने के लिए मुझे, और जब मैं पकड़ के बड़ी मुश्किल से लेके आया नाव के करीब तो देखा मैंने इतना लंबा शरीर, तप्त कांचन शरीर चैतन्य महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु को उसने अपने जाल में पकड़ लिया था। और वो देखने लगा ये कौन है कौन है, और उसकी उन चैतन्य महाप्रभु के मुंह से आवाज आ रही थी गोंग 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 करके, ऐसी आवाज आ रही थी। तो इसने सोचा अरे अरे ये तो लगता कोई भूत है। लेकिन फिर वो मछुआरे ने सोचा कि मैं अब क्या करूंगा, नरसिंह प्रणाम मंत्र बोलूंगा, नरसिंह आया, ओम नरसिंह आया। तो इस तरह से नरसिंह भगवान की स्तुति करने लगा, लेकिन बड़ा भयभीत हो गया था, बहुत घबरा गया था वो। और इस तरह जैसे ही मैंने उसको छुआ, इस व्यक्ति को मैंने जैसे ही छुआ तो मैं पागलों जैसे चाचने लगा, पागलों से चिल्लाने लगा, और तब से मैं ये हरी हरी कर रहा हूं और कुछ नहीं निकल रहा मुख से मैं। तो ये है वास्तव में जीव का सर्वोच्च धर्म। तो स्वरूप दामोदर जब, और भक्तों ने भी ऐसे सोचा शायद मैं भूत ना पकड़ लिया, लेकिन देखा कि चैतन्य महाप्रभु के छूने से ऐसा हुआ है। स्वरूप दामोदर ने कहा कि चिंता ना करो, मैं तुम्हारा ये भूत निकालता हूं। तो स्वरूप दामोदर ने कहा कि मैं तांत्रिक हूं और सारे तंत्र मंत्र जानता हूं। तो स्वरूप दामोदर ने जोर से थप्पड़ मारा, 3-4 ऐसे थप्पड़ मारे घुमा के, और बोला कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वासे महाप्रभु इस प्रेमावेश में क्या हुआ, उनके हाथ सारे जॉइंट्स, तीन जॉइंट्स है हमारे हाथ में, सारे जॉइंट्स खुल गए थे उन्हें। लेकिन जैसे ही उन्होंने महामंत्र सुना श्री चैतन्य महाप्रभु ने, फिर से जॉइंट्स सारे के सारे फिक्स हो गए। तो कहने का मतलब है कि यह है वास्तव में सर्वोच्च धर्म। इस सर्वोच्च धर्म में जो आनंद की प्राप्ति होती है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म सपनम परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तन कली काले धर्म हरि नाम संकीर्तन। यह है सर्वोच्च धर्म। कलयुग का सर्वोच्च धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन है। और कोई धर्म की आवश्यकता ही नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व कथे रहना था। कृष्णदास के विराज गोस्वामी कहते हैं ना कर्म योग से ना ज्ञान योग से ना अष्टांग योग से कलयुग में तो केवल हरिनाम से ही आपको जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो इस धर्म की तरफ हमें बढ़ना है। हम सब सही स्थान पर आ गए हैं और इसी पथ पे हमें चलते रहना है। और एक समय आएगा कि आप सब भी उस मछुआरे की तरह पागल हो जाएंगे, फिर आप सभी चलाएंगे जोर जोर से कृष्ण के लिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की कोई प्रश्न है? प्रारंभ में तो अर्थ के लिए आए थे, बाद में भगवान का जब दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि तो मैं तो कांच के टुकड़े के लिए भटक रहा था, अब तो मेरे पास हीरा है। तो प्रारंभ में तो ऐसे ही आते हैं, हम सब पुण्यात्मा है क्योंकि सब भगवान के पास आ रहे हैं, फिर भी पुण्यात्मा है। आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी शव हर्तर शवा। श्रीधर स्वामी कहते हैं इसका क्रम इस तरह से है, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी। पहले धन होता है किसी के पास, धन हाथ से निकल जाता है तो दुखी होता है, दुखी होता तो जिज्ञासु बनता है, जिज्ञासु होता है फिर ज्ञानी बन जाता है। ज्ञान क्या होता है उसको, कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, उनकी शरण में आता है। तो इसी तरह से ध्रुव महाराज प्रारंभ में आए थे धन के लिए अर्थ के लिए, लेकिन नारद जी की कृपा से वो भौतिक इच्छाएं सारी समाप्त हो गई, भगवान की शुद्ध भक्त। हरे कृष्ण। तो जैसे आपने बताया कि भगवान परम भोक्ता है और हमारी सारी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं, हमारी सारी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। जब साधक भक्ति में लगता है, उसको 10-15 साल 12 साल हो जाते हैं भक्ति करते हुए, उसको ज्ञान थोड़ा होता है तो उसकी इच्छाएं बनी रहती हैं, वो इच्छाओं के साथ भक्ति करता रहता है। और जब उसकी वो इच्छाएं पूरी नहीं होती, चाहे वो आध्यात्मिक हैं या भौतिक हैं, तो वो कुछ टाइम बाद फ्रस्ट्रेट हो जाता है और समटाइम्स वो विचलित हो जाता है। भक्त वो विचलित होके किसी और कोई रास्ता ढूंढता है, क्योंकि 10-12 साल उसने भक्ति की,
भक्ति का प्रोसेस ठीक से नहीं फॉलो करेंगे तो भटक जाएंगे। ध्रुव महाराज के प्रसंग में देखिए, पहले महीने उन्होंने क्या किया, हर 3 दिन में सूखे पत्ते खाए, दूसरे महीने में क्या किया, दूसरे महीने में हर 6 दिन में फल फ्रूट्स बेरीज खाए, और तीसरे महीने में क्या किया, केवल जल पिया, चौथे महीने में क्या किया, केवल वायु पिया, पांचवे महीने में क्या किया, वो भी बंद कर दिया, छठे महीने में एक पाँव में खड़े होकर इंटरनली बिल्कुल बाहर से सेंसेस होकर इनर्ट हो गए और वैसे के वैसे खड़े रहे और भगवत भगवान का दर्शन प्राप्त। यानी कि जैसे जैसे उनका महीना बीता उतना ही अधिक वो और भजन को बढ़ाने लगे और उतना अधिक डिटैच होते गए। तो भक्ति में आगे बढ़ने का टेस्ट ये है कि इतने वर्ष बीत गए, क्या डिटैचमेंट आया, क्या हमने त्यागा, या फिर हमारी जो है भोग की जो इच्छाएं, भोग की जो आकांक्षाएं और बढ़ गई हैं, या और संपत्ति हमने इकट्ठी कर ली है, और धन इकट्ठा कर लिया है, और भौतिक इच्छाएं बढ़ गई हैं, ये तो भजन में आगे बढ़ने का लक्षण नहीं है। आप समझ रहे बात? तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम भक्ति के प्रोसेस को एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं तो डिटैचमेंट आना चाहिए। भक्ति परेशानुभाव विरक्ति, भक्ति करने का मतलब यह है कि आपको परेशानुभाव होता है, भगवत साक्षात्कार होता है और उसके बाद विरक्ति आती है, साथ में ही विरक्ति भी आती है। तो ये हमें देखना पड़ेगा हम डिटैच कितने हुए हैं, है कि नहीं। हमारा अगर हमारा अटैचमेंट बढ़ता जा रहा है और तो इसका मतलब हमारे प्रोसेस में कोई गड़बड़ है, हम प्रोसेस ठीक से नहीं फॉलो कर रहे। प्रोसेस ठीक है, हम ठीक से फॉलो नहीं कर रहे।
पर वो भक्त उस भौतिक इच्छाओं को बनाए रखता है और उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उससे वो विचलित हो जाता है, छोड़ देता है वो, तो उस स्थिति में हमारे लिए या भक्त के लिए क्या संदेश है
उसमें? तो फिर हम भक्तों को ऐसे व्यक्ति का साथ देना चाहिए और उसको संग देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी बीमारी बहुत गंभीर है। क्योंकि भक्त के समाज में रहकर भी अगर वो भटक गया है तो इसका मतलब वो और ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। प्रभुपाद ने ये कहा कि कितने लोग नहीं आ रहे हैं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और कोई आके जा रहे हैं ये दुखी बात है, क्योंकि यहां आ गए फिर आके वापस उसी छल धर्म को अपना रहे हैं तो वो तो बहुत बड़ा इल्यूजन है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हमें एक्सपर्ट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा और बहुत अच्छे संगति के द्वारा, तब कुछ संभावना है कि वो वापस आए। होता क्या कि हमारे पिछले जन्म के संस्कार इतने ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं हमारे संस्कार, कि कई बार भक्ति ठीक से ना करने के कारण वो संस्कार हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। अगर भक्ति का प्रोसेस हम ठीक से नहीं फॉलो करेंगे और हमारे संस्कार बहुत स्ट्रांग है तो संस्कार हावी होंगे, और भक्ति अगर स्ट्रांग है तो संस्कार हावी भी होना चाहेंगे तो फिर वो रुक जाए। इसलिए तो भक्त का जो है, जब भक्तों का जब चार्ट देखा जाता है वो चार्ट क्यों चेंज होता है, इसीलिए तो चेंज होता है क्योंकि अगर वो कोई भक्ति ठीक से कर रहा है, प्रोसेस को ठीक से फॉलो कर रहा है तो फिर उसके स्टार्स चेंज होते हैं, नहीं तो नहीं चेंज होंगे, नहीं तो जैसे डिस रहेगा।
थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर जी, बहुत उत्साहवर्धक प्रवचन था। यहाँ बताया गया कि हर किसी को भगवान की प्रसन्नता के लिए बिना इच्छा स्वार्थ की इच्छा के सब करना चाहिए, लेकिन एक पद जीव के लिए जिसकी इतनी फ्रूटी मेंटेलिटी होती है, निस्वार्थ होना बड़ा मुश्किल है। तो कैसे इसकी शुरुआत की जाए कि हम केवल गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सेवा करें?
प्रारंभ में प्रभु जी कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो अगर फ्रूटी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और फ्रूट से बड़ा अटैच है तो उसको कैसे एंगेज किया जाए। गर्ग संहिता में दिया है कि जो भी फ्रूट कमा रहे हैं या फ्रूट जिनको मिल रहा है, मैंगो मिल रहा है, एप्पल मिल रहा है, यानी कोई भी फ्रूट मिल रहा है या धन के रूप में फ्रूट मिल रहा है, तो उसमें से एक परसेंटेज जो है वो भगवान को समर्पित करें। तो गर्ग संहिता बताया कि 10%, उस श्लोक में लिखा हुआ है कि 10% अपनी आमदनी से हमें भगवान को देना चाहिए। राधिका रमन जी, 10% नहीं दे तो 5% दे, कुछ तो दें। देंगे नहीं तो रिएक्शन लेना पड़ेगा, 100% गारंटीड है, और कभी भी हम लोग डिटैच नहीं हो पाएंगे फ्रूट्स। इसलिए अगर हम जो कुछ फ्रूट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फ्रूट मिल रहा है हमें, तो उसमें से 1% हमें कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद यद तपस्यसि कौन्तेया तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान गीता में कह रहे हैं मुझे दो, नहीं दोगे तो फिर लेना पड़ेगा बहुत कुछ फर्मों का फल। तो इसलिए ये त्यागने की भावना हमें डालनी चाहिए, और जैसे जैसे हम 1% या 10% से शुरू करेंगे, ऑफर करना शुरू करेंगे रिजल्ट्स, आप देखेंगे आप ही डिटैच हो जाओगे, आपके हृदय में भक्ति बढ़ेगी स्पिरिचुअली। अब तो ग्रेजुअल प्रोग्रेस है, एकदम से नहीं हो पाएगा। बात सही कह रहे हैं कि एकदम से फ्रूट से डिटैच होना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कुछ अपने कर्मों का फल हमें त्यागना जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे पूना टेम्पल में उन्होंने नित्य सेवा शुरू की है, बहुत सुंदर, और नित्य सेवा से करीब 7-8 लाख रुपए आमदनी हो जाती होगी। तो जो हाउस होल्डर्स हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो अपने इनकम से 10% दे रहे हैं। इसी तरह से चौपाटी में भी है, इसी तरह से क्रिश्चियन कम्युनिटी भी करते हैं, इस तरह से सिख कम्युनिटी में भी किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि क्रिश्चियंस में भी 10% देते हैं, सिख कम्युनिटी में काइंड डोनेशंस बहुत देते हैं। अब नाथद्वारा जाएंगे, हमने देखा वहां बहुत सुंदर है, वहां पे अलग अलग काउंटर्स बने, काइंड डोनेशन का पूरा एक कमरा बना हुआ है। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि केवल धन ही देना है, जो भी देना चाहे जो कुछ वो दे सकते, फल देना चाहे, फूल देना चाहे, कुछ सब्जी देना चाहे, आटा देना चाहे, चावल देना चाहे, कमरा भरा हुआ है काइंड डोनेशन। यानी हर व्यक्ति को मौका मिलता है कृष्ण की सेवा करने में। अब जगन्नाथपुरी जाइए, जगन्नाथपुरी में किसी भी घर में जाइए आपको जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिलेगा। वहां प्रत्येक व्यक्ति वहां पर जगन्नाथ जी की सेवा करता है, तो पूरा जगन्नाथपुरी जो है कॉन्शियस है जगन्नाथ जी के। अब जयपुर जाइए, जयपुर में प्रत्येक दिन स्पॉन्सर्ड है, ज्यादा गोविंद देव जी की सेवा में जजमान लगे हुए हैं, जो पूरा सुबह से लेकर रात तक का जो है भोग स्पॉन्सर करते हैं। तो जयपुर के राजस्थान में जो मारवाड़ी है वो प्रत्येक दिन क्या करते हैं, पहले गोविंद देव जी का दर्शन करेंगे फिर दुकान खोलेंगे। सुबह मंगल आरती से लेकर प्रत्येक दिन 10,000 लोग दर्शन करते हैं राधा गोविंद देव जी के, और गोविंद देव जी को कुछ ना कुछ भेंट देते हैं, कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, और उसके बाद फिर वो अपनी दुकान खोलते हैं या बिजनेस करते हैं। तो कहने का मतलब है जब हमारे केंद्र बिंदु श्री कृष्ण हो जाएंगे तभी तो जाके हम डिटैच हो पाएंगे फ्रूट्स, नहीं तो संभव ही नहीं। प्राचीन समय में जो राजा होते थे, जो राज ऋषि होते थे, वो भगवान के लिए मंदिर बनाया करते थे, सवाई जयसिंह थे जैसे, या उससे पहले मान सिंह थे, या यहाँ तक कि मुसलमान राजाओं ने भी अकबर ने तक जो है सहायता की मंदिर बनाने में। तो ये एक कम्युनिटी इस तरह से होता है कि हर व्यक्ति कोई भी, जैसे यहाँ बताया धर्म अर्थ कामोक्ष की बताई गई है, या कोई भी किसी वर्ण में है, किसी आश्रम में स्थित है, हम सब मिलकर क्या करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं। ये पूरा कम्युनिटी है, पूरा समाज बन जाता है, और ऐसा समाज जहां पर कृष्ण केंद्र बिंदु हो जाते हैं उस समाज में कोई समस्या ही नहीं आती। इट्स अ कंप्लीट पैकेज, लेकिन पैकेज पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि सब नहीं कर रहे हैं। तो हम सबको अपनी अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कुछ ना कुछ त्यागना चाहिए, जब तक त्यागने की भावना नहीं होगी तब तक हम स्पिरिचुअली आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये पॉइंट और कुछ ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।